मेरे प्यारे साथियों नमस्कार फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत आज कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, कुछ खबरों के ही बारे में आइए हम सब जान और समझ लेते हैं। रेडियो न्यूज में चक्रवात की खबर थी, एक चक्रवात की, जिस चक्रवात को नाम दिया गया है गैब्रियल। और यह चक्रवात न्यूजीलैंड में आया और यह इतना जबरदस्त चक्रवात रहा कि उसके कुछ क्षेत्रों में बकायदे आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। तो चक्रवात का नाम है गैब्रियल और यह आया है न्यूजीलैंड में। अब यहां एक काम मैं आपके जिम्मे सौंपता हूं और वो यह कि अगर यह चक्रवात न्यूजीलैंड में आया है तो वह महासागर कौन सा होगा, इसे आप मैप पर जाएं और देखें तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि यह न्यूजीलैंड है कहां पर और किस समुद्र तट पर यह बसा हुआ है। समुद्र तो होगा ही, चक्रवाती तूफान आया है। कल के अखबारों में आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी और वो यह है कि तुर्की और सीरिया में जो अभी भयावह भूकंप आया हुआ है, 30,000 से अधिक मौतें वहां हो चुकी हैं। सोच करके देखिए वहां के खौफनाक मंजर के बारे में, बहुत ही दुखद है। भारत भरपूर कोशिश कर रहा है उनकी मदद करने की और पूरे विश्व में भारत की इस कोशिश की सराहना भी हो रही है, ये बड़ी बात है। दोस्तों, कल की खबर जो बहुत चौंकाने वाली बात थी और बहुत दुखद भी थी कि वहां बहुत से जो बिल्डर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया है। किस लिए गिरफ्तार किया गया? इसलिए गिरफ्तार किया गया कि जो ज्यादा मौतें हुई हैं वो मकानों के गिरने से हुई हैं और मकान इसलिए गिरे हैं क्योंकि उनका निर्माण सही नहीं किया गया, यानी कि मामला मिलावट का था, मामला भ्रष्टाचार का था, मामला बेईमानी का था, बस यही मामला था। तो मुझे लगता है कि ये एक रिसेंट उदाहरण है भ्रष्टाचार को लेकर। दोस्तों, आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा खासकर महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के नीलामी को लेकर, हालांकि उसमें दिया हुआ होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी यही आता है कि उस खिलाड़ी को इतने में खरीदा, इतने में खरीदा। जरा खरीदा शब्द अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा अच्छा है कि इतने में लिया शब्द उसकी जगह इस्तेमाल। हालांकि ठीक है, नीलामी हो रही है, बोली लगा रहे हैं तो आप खरीद ही रहे हैं, लेकिन मनुष्य के लिए, खिलाड़ी के लिए यह शब्द मुझे सम्मानजनक नहीं लगता है, है ना। वैसे भी तो जब आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं कि आप अपनी सैलरी मांगते हैं, वो आप कहते हैं कि नहीं हम आपको इतना देंगे, प्राइवेट में तो खूब होता है ये, तो खरीदा शब्द ठीक नहीं लगता। लेकिन चलिए, खैर, सिविल सर्विस में अगर आप लिखेंगे इसको लेकर के कोई भी वाक्य तो उसमें खरीदा मत लिखिएगा। लेकिन अच्छी बात जो है इसमें वो ये है कि जो महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की जो बोली लगी उनको भी काफी अच्छी कीमतें मिली हैं और एक अच्छी बात है विमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से। विमेन्स प्रीमियर लीग शुरू होने जा रहा है, इसमें हमारी जो स्मृति मंधाना है उनको 3.4 करोड़ रुपए मिले हैं जिस टीम के लिए वो खेलेंगी, वहां खेलने के लिए 3.4 करोड़, ये हाईएस्ट है। और इसके बाद फिर बाकी खिलाड़ियों के नाम है और कितने कितने में उनको अब लिया गया, आप कह लीजिए टीम में शामिल किया गया कहना चाहिए, ये उनका एक ऑनरेरियम है, उसकी लिस्ट दी हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात केवल ये है कि जो हमारी महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं उन्हें भी अब ये सम्मान मिल रहा है और उनके भी खेल को इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि उन्हें इतनी राशि दी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राशि से ही किसी के खेल का मूल्यांकन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मायने तो रखता ही है। दोस्तों, अब मैं जो एक दो बात आपसे करने जा रहा हूं वो अपने आप में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इसको लेकर के बहस है और आज दैनिक भास्कर ने बकायदे इस पर एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है और आप लोगों ने अभी अभी खबर पढ़ी होगी कि हमारे एक न्यायमूर्ति हैं, उन न्यायमूर्ति को गवर्नर बनाया गया है, यानी परसों कुछ नए गवर्नर्स बनाए गए, पुराने गवर्नर्स हटाए गए हैं तो उनमें उनको गवर्नर बनाया गया है। मुझे लगता है कि न्यायमूर्ति का नाम क्या था ये आपके लिए भी मायने नहीं रखना चाहिए। इसको लेकर के अब एक थोड़ी सी बहस सी छिड़ी है, कल तो बकायदे आज तक चैनल पर इसको लेकर के बातचीत भी की जा रही थी, आज तक पर था या एनडीटीवी पर था मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से किसी चैनल पर इस पर बहस हो रही थी। बात इसको लेकर के हो रही थी कि जो न्यायाधीश होते हैं हायर कोर्ट के, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, क्या रिटायरमेंट के बाद उन्हें गवर्नर बनाया जाना चाहिए। देखिए, जो आयोग बनते हैं, कमीशन बनते हैं, वहां तो इन्हें बनाया जाता है और वहां जब बनाया जाता है तो इस तरह के विवाद की स्थिति भी नहीं आती है, क्योंकि जो आयोग का काम होता है काफी कुछ वो कहीं ना कहीं न्याय से जुड़ा हुआ होता है, तो वहां तो ठीक है। लेकिन राज्यपाल बनाया जाना डेफिनेटली एक तरीके से विवाद का विषय है। आप कोई भी स्टैंड ले सकते हैं, दोनों तरह की बातें हैं कि क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। वो जानकारी रखते हैं, उनको संविधान की जानकारी है और गवर्नर के रूप में उनको संविधान को ही लागू करने की स्थितियों को देखना है, तो उस रूप में तो बिल्कुल सही है। कानूनी संवैधानिक कोई प्रतिबंध भी उस तरीके से नहीं है, क्योंकि अगर संवैधानिक प्रतिबंध होता तो फिर तो आप बना ही नहीं सकते थे। लेकिन जब हम व्यावहारिक स्तर पर देखते हैं तो कुछ सवाल मन में उठते हैं। दैनिक भास्कर ने बकायदे वे सवाल इसमें उठाए हैं। जैसे एक सवाल जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि जब न्यायमूर्ति है कोई न्यायाधीश, तो आप देखिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आपको एक संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है ना। सुप्रीम कोर्ट आपको महाभियोग लगाना पड़ता है, इम्पीचमेंट के जरिए ही आप उन्हें हटा सकते हैं, और वो इतना आसान नहीं होता। आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका है। लेकिन जब आप गवर्नर बन जाते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जब आपको गवर्नर बना दिया जाता है, तो गवर्नर को हटाने के लिए किसकी जरूरत है? हालांकि ठीक है, संविधान में टर्म 5 ईयर्स का है, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि उससे पहले उन्हें हटाया ही नहीं जा सकता। कुछ नहीं, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से केवल एक फोन जाना है कि आप अपना इस्तीफा दे दें, बस बात खत्म हो गई। केवल एक वाक्य से उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये एक जो स्थिति है अपने आप में कहीं न कहीं थोड़ी सी चिंतनीय स्थिति है, क्योंकि कहीं न कहीं इससे जो न्यायमूर्ति की जो गरिमा है वो कहीं थोड़ी बहुत तो बाधित होती है। दूसरी बात जो इसमें उठाई गई है और मुझे भी लगता है कि वो सही है, वो है नैतिक मापदंड। और ये आपके फोर्थ पेपर का एक टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नैतिक मापदंड। इस मायने में कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ बहुत सारे केसेस जाते हैं, या कह लीजिए कि जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केसेस होते हैं जिसे हम जनहित याचिका कहते हैं, तो ज्यादातर तो सरकार के विरुद्ध ही होते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे वो विधायिका हो। अब आप यदि उनके पक्ष में फैसले देते हैं और उसके बदले में राज्यपाल आपको बना दिया जाता है, तो डेफिनेटली फिर सवाल उठता है कि क्या ये उस फैसले के लिए दिया गया पुरस्कार है? तो नैतिकता का प्रश्न उठता है। और आगे चलकर के नैतिकता इस रूप में भी संदिग्ध फिर हो जाती, या कह लीजिए कि न्याय संदिग्ध हो जाता है कि क्या दूसरे न्यायाधीशों के दिमाग में भी ये बात आ सकती है कि सरकार का फेवर करो, और यदि फेवर करते रहे तो आगे चलकर यहां से रिटायरमेंट के बाद कुछ न कुछ उसका पुरस्कार मिल जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां भी दिमाग में पैदा होती हैं, इस तरह के प्रश्न दिमाग में खड़े होते हैं। तो ये एक विचारणीय प्रश्न है, और चूंकि संविधान से जुड़ा हुआ है, गवर्नर से जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले के एडिटोरियल कमेंट में एक बात और उठाई गई थी। अभी जब आपने देखा कि अदाणी के मामले में संसद में जब बहस हो रही थी, तो जब कांग्रेस पार्टी ने और भी दूसरे विपक्षी दलों ने अदाणी के खिलाफ जो भी बातें कहीं, प्रधानमंत्री जी पर जो भी आरोप लगाए, उनको लेकर के बार बार जो सत्ताधारी पार्टी है वो ये मांग करती रही कि आप इन पर प्रमाण दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। तो अब सवाल ये उठता है जो इसमें उठाया गया है एडिटोरियल कमेंट में, और मुझे लगता है कि इन सब बातों पर आपको ध्यान भी देना चाहिए, वो ये है कि लोकतंत्र में बहस होती है पक्ष और विपक्ष में। विपक्ष अपना संदेह व्यक्त करता है, उसको जो भी संदेह लगते हैं उन्हें वो व्यक्त करता है। जरूरी नहीं कि उन संदेहों के प्रमाण भी हों, क्योंकि यदि संदेहों के प्रमाण हैं तो सीधी सी बात है कि फिर तो वो संदेह ही नहीं है। तो अगर प्रमाण विहीन बहस को या तथ्यों को बिल्कुल निकाल दिया जाए कि नहीं, संसद में नहीं उठाया जा सकता, तो फिर बहस होगी कैसे? पहली बात। दूसरी बात कि संसद बहस की जगह है और जो न्यायालय है वो जजमेंट की जगह है, वो निर्णय देने की जगह है, वो न्याय का स्थान है। संसद न्याय का स्थान नहीं है, संसद बहस की जगह है, जहां आप चीजों को अलग अलग कोणों से देखने की कोशिश करते हैं। वे कोण गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग कोण मिल जाते हैं बहस के लिए किसी भी मुद्दे पर, और फिर हम एक अंतिम निर्णय की स्थिति तक पहुंचते हैं। तो संसद एक अलग फोरम है और न्यायालय एक अलग फोरम है। हम संसद के बहस को न्यायालय के बहस से तुलना नहीं कर सकते कि न्यायालय में जब कोई भी बात रखी जाएगी तो कहा जाएगा भाई कि आप अपनी बात को प्रामाणिक तौर पर कीजिए, इसके बारे में सबूत पेश कीजिए। लेकिन यदि हम संसद में भी ऐसा करने लगे तो यह माना जा रहा है कि जो बहस की स्थिति है वो लगभग शून्य सी हो जाएगी। और यदि लोकतांत्रिक प्रणाली में बहस ही शून्य हो जाए और बहस के लिए प्रमाणों को अनिवार्य कर दिया जाए, तब लोकतंत्र का चेहरा कैसा होगा, उसकी आत्मा कैसी होगी, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे संविधान से जुड़े हुए हैं, हमारी न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, हमारी कार्यपालिका से जुड़े हुए हैं, हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि चूंकि ये लेटेस्ट उदाहरण है तो इन पर आपको पूरी गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन दोनों उदाहरणों को आपको नोट भी कर लेना चाहिए, बकायदे नोट कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। फ्रेंड्स, अंत में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज के कुछ अखबारों ने इस पर छापा है कि हमारी जो उच्च शिक्षा है वो मानकों के मामले में कितना ज्यादा इनका उल्लंघन कर रही है। संसद में जो वक्तव्य दिया गया है, मैं फिलहाल अभी वो आपके सामने रख रहा हूं। हमारे देश में अभी कुल 1113 विश्वविद्यालय हैं, चूंकि उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है और अभी हम विदेशी जो संस्थान हैं उनको भारत में कैंपस खोलने की अनुमति भी दे रहे हैं, तो आप उससे जोड़कर इसे देख सकते हैं। हमारे यहां अभी कुल 1113 यूनिवर्सिटी हैं और 43,796 कॉलेज हैं, 43,796 कॉलेज, ठीक है। अब हम प्रतिशत पे बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। संसद में अभी ये कहा गया है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं इसमें 62% यूनिवर्सिटीज और जो हमारे टोटल कॉलेज हैं इनमें से 78% कॉलेज तय मानकों पर खरे नहीं हैं। उसके लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन पर वो खरे नहीं हैं। ये मानक कहां से निर्धारित होते हैं? एक संस्था है नैक, कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इनसे मान्यता लेनी होती है इनको। और इतने प्रतिशत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने मान्यता नहीं ली है, तो सोच करके देखिए कि इनका स्तर क्या होगा। जो इन्हें मान्यता मिलती है उसके कुछ मापदंड हैं, वो मापदंड मैं आपको बता देता हूं। करिकुलम यानी कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, टीचिंग लर्निंग कैसी है, रिसर्च एक्सटेंशन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, छात्रों को आप सपोर्ट कैसा देते हैं, गवर्नेंस लीडरशिप कैसी है और इनोवेशन बेस्ड प्रैक्टिस किस तरीके की है, ये इनके स्टैंडर्ड हैं। और आप सोच करके देखिए कि अगर उच्च शिक्षा में इन्हीं मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है तो आप कैसे कहेंगे कि यह उच्च शिक्षा है। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें थी जिनकी चर्चा मैंने यहां की। अब इस विषय पर बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, काजल सेन, प्रेमचंद यादव, माधवी कुमारी लातेहार झारखंड से, लिमांशी कोटा राजस्थान से, सतीश संत दिल्ली से, जय कदम, शराफत अली लखनऊ से और रोहिताश गुर्जर जयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।